ஐயங்கவீன ப்ரியம் நித்யம் ஸ்ரீமதுராதிபம் சுககரம் ஸ்ரீவேட்டலீஷம் முதா ஸ்ரீமத்வாரவதீஷ கோகுலபதி ஸ்ரீகோகுலேந்தும் விபும் ஸ்ரீமன்மன்மதமோகனம் நடுவரம் ஸ்ரீபாலகிருஷ்ணம் பஜே ஸ்ரீமத்வல்லபவிட்டலோகிரிதரம் கோவிந்தராயாபிதம் ஸ்ரீமத்பாலகிருஷ்ணகோகுலபதி நாதம் ரகுணாம் ததா ஏவம் ஸ்ரீ யதுநாயகம் கில கணஷ்யாமம் சதவம்சஜன் காரேந்தீம் ஸ்வகுரும் கிரிம் ஷீவிபூஷிதரன் நவநீர்தாபாத்ஷீதாம்பராதருணபிம்பலாதருஷ்டா பூர்ணேந்துசுந்தரமுகாதரவிந்தநேத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வமஹம் ந ஜானே.
சம்பவத்தை ஆப்கோ யே பதாயா கயா ஹோகா கி ஆஜ் கி சபா கா ஆயோஜன் ஏக் ஸ்ரீமத் பாகவத் ஜீ கே பஹுத் ஹி கம்பீர் விஷய கோ லேகர் கைவல் யஹி கே பிரயோஜனம் महाराज जी ने एक बहुत ही गंभीरता से विचारणीय विषय रखा है. मेरी समझ में ऐसे विचार बिंदुओं पर बहुत कम मथुरा वृंदावन में विचार विमर्श हुआ है. अन्य बातें जो श्रीमद् भागवत जी की सामान्यतया होती हैं, लीला परक भाव परक, मैं महाराज जी की प्रवृत्ति देखता हूं. जब भी कभी रखते हैं भागवत जी का कोई न कोई ऐसा पक्ष जो आप लोगों को कितना हम लोग दे पाते हैं पता नहीं, परंतु महाराज जी की कृपा से हम लोग उसका कुछ अध्ययन जरूर कर पाते हैं. एक बार आपने रस का भव भाव का रखा था यहीं, अब की बार सब जानते हैं कैवल्य का अर्थ मोक्ष है. बस एक ही बात है, कैवल्य ही जो प्रयोजनम, कैवल्य माने मुक्ति. महाराज जी को कहां से ये प्रेरणा हुई? मुझे तो लगता है जीव गोस्वामी जी इनके हृदय में विराजमान हो गए और इन्होंने उनके संदर्भों को, सूत्रों को खूब मथन करके और मनन करके, न इन्होंने प्रीत संदर्भ छोड़ा होगा और न इन्होंने भक्त संदर्भ, न क्रम संदर्भ, न सारार्थ दर्शनी विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका, और ना कोई ऐसा बिंदु जो महाराज श्री ने पहले से स्वयं न सोच लिया हो. तो वैष्णवो अन्य चर्चा तो आप सुनते हैं, केवल 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 से बना कैवल्य, कैवल्य माने हो गई मोक्ष, हो गई मोक्ष। आज उसी विचार बिंदु पर हमारे यहाँ के विद्वान पधारे और आपको कैवल्यज्ञ प्रयोजनम, श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन क्या केवल मोक्ष प्राप्ति है, अद्वितीय वस्तु क्या है, ब्रह्मात्म का संबंध क्या है, तन्निष्ठ कैवल्य का प्रयोजन क्या, भागवत जी कैसे इन अधिकार विषय संबंध प्रयोजन चारों की मीमांसाओं को समूह अपने में संक्षिप्त गर्भ करते हुए और त्रयोदश अध्याय तक महाराज जी ने इसकी यात्रा की है। और अब इस पर मंगलाचरण के उपरांत अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, वे अध्यक्ष महाराज श्री हमारे स्वयं विराजमान है, आपसे बढ़कर महाराज अध्यक्ष होगा कौन, हम समस्त विद्वान इसका अनुमोदन करें। हमारे विद्वानों ने अनुमोदन किया और समर्थन किया है, मैं ये निवेदन करूंगा कि महाराज श्री को माल्यार्पण करें और आगे की कार्रवाई उसके उपरांत चले। साथ ही जो विद्वान यहां विराजमान हैं वे बहुत प्रसन्न हैं कि आज की ये सभा महाराज श्री की अध्यक्षता में ही हम लोग करने जा रहे हैं। सभा का नियम होता है संयोजक स्वयं कोई शब्द अपनी तरफ से बोल नहीं सकता, मैं महाराज श्री से आज्ञा चाहूंगा कि सभा संचालन के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समग्र विद्वानों का यहां अर्चन हो रहा है और एक से एक उद्भट विद्वान व्याकरण वेदांत पुराण उसके यहां प्रतिनिधि उपस्थित हैं। संक्षेप में यदि थोड़ा थोड़ा भी वर्णन करेंगे तो निस्संदेह ये समय के अंदर ही अंदर अर्थात हमारी सेवा पूजा का जो शयन का समय होता है उसका ध्यान रखते हुए और सभा को चलाना है। विद्वानों को कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसका वे प्रतिपादन स्वयं न करें। आकाशवाणी तो हमें 10 और 15 मिनट ही देती है, चाहे हम कितना भी चिल्लाएं वे बंद कर देते हैं। फिर ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हम सभी विद्वानों की वाणी सुने, एक यही तो विद्वत गोष्ठी का आनंद होता है। तो मैं सर्वप्रथम प्रारंभ कराना चाहूंगा श्री ठाकुर जी महाराज से। श्री ठाकुर जी शास्त्री पधारे और वे प्रस्तुत प्रकरण की भूमिका पर अपने विचार रखें जिससे हम आगे बढ़ें।
वंदे नंद श्री राम सादुरीरमभीक्ष्ण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनात भुवनत्रयम्। पूर्व में प्रभु के चरणारविंद में एवं संतजन विद्वज्जन सबके लिए प्रणति करते हुए और ये विषय आज को है कैवल्यज्ञ प्रयोजनम। श्रीमद् भागवत जी की फलस्तुति है ये। श्रीमद् भागवत जी को निर्माण व्यास जी महाराज ने किया। जब प्रभु प्रकट हुए तो आपके सवरे गुण रहे जगत के बीच में और जब अंतर ध्यान हुए तो सब गुण अंतर ध्यान है जाते। अब कोई ऐसा यत्न हो जाते प्रभु अंतर ध्यान है वो भी उनके गुण और उनकी लीला या जगत में रहे, या के लिए श्रीमद भागवत ग्रंथ को निर्माण है, या में द्वादश स्कंद में आश्रय है। आश्रय जो है वो प्रभु है जगत के, तो उनकी प्राप्ति के लिए ये जीवात्मा हरि को ही रूप है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो या के प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति के लिए ब्रह्म ही तत्व आत्मा जो है ब्रह्म रूप है ये ही सिद्ध करना है। अब या के प्रकार अनेक तरिया के भक्त मार्गो बहुविधो मार्ग ही भावे न भाव्यते स्वभाव गुण मार्गे न तासम भावो विभिद्यते, तो अनेक तरह के भक्त मार्ग हैं बिना भक्ति के बिना जो भगवत प्राप्ति होए नहीं। ज्ञान भी है जहाँ भी कई वर्णन चिन्हों श्रीमद भागवत जी ग्रंथ के बीच में ज्ञान और भक्ति दोनों के लिए वर्णन चिन्ह है, परंतु ये ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति में कष्ट है। ये जो है एक निर्वीज भक्ति योग है, एक सविज भक्ति योग है। यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्तदो विनयमेतत, ये जहाँ जहाँ मन जाए आके लिए रोक करके प्रभु में लगानो, ये जो है निर्वीज योग है। या में इंद्रन को जैसे नेत्रन को अंधकार में कोई प्रयोग नहीं है, ऐसे ज्ञान मार्ग में इंद्रन को कोई भी प्रयोग नहीं है। जो दर्शन है नेत्रन को धर्म सुंदर दर्शन करवे को, कानन को धर्म सुंदर तान बंसी की धुन सुनने को, जिह्वा को धर्म रसास्वादन करवे को, और ये त्वचा को धर्म कोमल अंग स्पर्श करवे को, ये वस्तु कोई नहीं है। क्यों कि ज्ञान मार्ग में खाए कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यद भा सदृशी सात भाषस्तस्य महात्मना, यदि हजारन करोड़न सूर्य एक संग उदय हो तो भी उनको प्रकाश ब्रह्म को तो प्रकाश है सके नहीं है सके, परंतु वामे प्रकाश में प्रकाश लीन है गो, नेत्रन दे देखो नहीं हमने, कानन से कुछ सुनो नहीं, हृदय से कुछ ध्यान नहीं कियो, तो कहाँ हमें मिलो का। तेसा मतौ क्लेश अले शिष्य से नान्यत यथा थूल तुषाव घातन, या में ज्ञान मार्ग में ये भक्ति के बिना तो निर्वाह नहीं है ज्ञानी को भी। क्यों कि यक्षात सर्वत्र सर्वदा, ये भक्त मार्ग के बिना आज तक ज्ञान से काउए प्रभु की प्राप्ति भई नहीं, और केवल भक्ति से प्रभु की प्राप्ति है या के बहुत प्रमाण है। अब वो तीन प्रकार को है तो हजारों तरह के स्वभाव को मार्ग से, परम तीन प्रकार के हैं स्थानीय भूता प्रधानी भूता और केवला। स्थानीय भूता जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके लिए स्थानीय भूता भक्ति है, वे केवल ब्रह्म ज्ञान करे हैं, और जो प्रधानी भूता है जिनको ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति योग है, तो जहाँ ज्ञान पूर्वक भक्ति है वह भक्त्याभास है, शुद्ध भक्ति नहीं है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्त रुत्तमा, तो स्थानीय भूता और प्रधानी भूता जो भक्ति है, जैसे ज्ञानी है वो केवल ब्रह्म ज्ञान करे हैं, और जो प्रधानी भूत हैं ऐश्वर्य मिश्रित उनको भक्ति योग है। तो जो स्थानीय भूत भक्ति है वासे सद्गुण आनंद है, जैसे हमारे बसदेव जी हैं इनकी उपासना इनको ध्यान जो ऐश्वर्य मिश्रित है, भक्ति भी है और ऐश्वर्य मिश्रित भी है, क्योंकि प्रभु ने प्रणाम किया उनके चरण के बीच में, आपने आशीर्वाद नहीं दियो डर गए हैं, ये तो ईश्वर है। और उनसे भी ज्यादा जो केवला हैं जो प्रभु को ईश्वर समझे ही नहीं है, जो कि अपना बालक ही समझे हैं, उन्होंने ईश्वर भाव कभी उदय नहीं हो, तो केवला है उनको आनंद जो बहुत है। जैसे आप काउ राजमहल में जाओ तो राजमहल के बाहर से आप दिख जाए कि ये राजभवन है, ये बगीचा है, ये स्थानीय भूता भक्तन को है। और यदि प्रधानी भूत भक्त हैं वो अंदर जाके महल की प्रदक्षिणा कर लेंगे, देख लेंगे कि ये महल बने भए हैं, इनमें प्रभु जो राजा साहब निवास कर रहे हैं, और जो केवला हैं वे तो श्री अंग में जाए के विग्रह में ये आनंद करे हैं, दर्शन करें, यहाँ प्रभु बैठे हैं, यहाँ जो है स्नान करे हैं, यहाँ विलास करे हैं, ये जो है उनके लिए अंतरहिते भगवती सहसैव वृजं अतप्य तम चक्षा करण्य एव यूथम। या प्रकार जो भक्त हैं श्रीमद् भागवत जी में दोनों विषय वर्णन किए हैं, ये तात्पर्य केवल यही कि प्रयोजनम या को यही तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग भी वर्णन किनो है और भक्त मार्ग भी वर्णन किनो है, तो परम श्रेष्ठ ये भक्त मार्ग है। या मैं चमत्कृति दिखाए करूँ ज्ञान मार्ग को भी वर्णन कियो, क्योंकि सभी भक्त ने यहाँ बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, सूर्य के सामने दीपक जो है प्रज्वलित करने से कोई प्रयोजन नहीं है, यही जो है करो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल
छात्र भी ठाकुर विजयी सभायाम अत्र संस्थित छात्र भी ठाकुर विजयी सभायाम अत्र संस्थित श्री ठाकुर जी शास्त्री पधारे यहाँ भक्त रेव प्रशंसयात्र केवल भक्ति ही प्रशंसनीय है भाषितम छात्र मंदिरे। मैं आगे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ वाणी के धनी और हमारे कलकत्ता के सर्वप्रथम ब्रज विद्वानों में गणना किए गए श्री मुरारीलाल जी शास्त्री। बहुत वर्ष जिन्होंने कलकत्ता में अपने ब्रजरथ की वर्षा की, वे भी यहाँ पधारेंगे और साहित्याचार्य जी अपनी वाणी से हमें समलंकृत करेंगे। समय की याद दिलाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि विद्वान स्वयं ही विचारक होते
पढ़ा। श्याम चरणा अध्यक्ष महोदया सर्वे चारव वैष्णवा सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यश्रवणम यदरहणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यो जो कलयुग का युग है इसमें सबसे सरल साधन है यद कीर्तनम। क्यों? कि भगवान ने कहा है शरणादपि सुनीचेन सरोरपि सश्रुणा अमानया मानदेन कीर्तनीय सदारी। भगवान विराजते हैं उनके सामने कीर्तन कैसे होना चाहिए? मुख से कीर्तन, नेत्रों से दर्शन और हाथों से प्रणाम। सरोरपि सहिष्णुना, यहाँ ब्रज की विशेषता ही है कि भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन मदन मोहन जिस समय गऊ चराने जाते थे तो हाथों से वृक्षों का स्पर्श करते थे। सब लोग कहते श्याम सुंदर आप ये क्या कर रहे हैं? बोले अहो ए श्याम वरम जन्म, जड़ और चैतन्य में अंतर नहीं है। यहाँ के ब्रज के जो जड़ हैं वो चैतन्यों से अधिक हैं। यही ऐसे भक्त हैं जो आता है उसको छाया देते हैं, आता है उसको फल देते हैं। तो अहो ईशाम वरम जन्म सर्व प्राणलुप जीवनम, यही मनुष्य में और भक्तों में अंतर है। साधारण मनुष्य तो केवल गरम भर हो जाता है, अपने लिए पैसा कमाता है, और यहाँ ब्रज में आप देखेंगे इस जन्माष्टमी पर्व पर जितने लाखों दर्शनी आते हैं सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो भगवान की ब्रज में विशेषता है यद कीर्तनम, कीर्तन करें और कीर्तन करते करते स्मरण करें, और स्मरण करते करते भगवान का ये त्रिपुटी सम्य है। जैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति है ऐसे इस भक्ति में कीर्तन करने के सहित भगवान का दर्शन करें, भगवान का ध्यान करें कि हे भगवान हमारे लिए आप यही भक्ति प्रदान करें। भक्ति क्या चीज है कि बस सब में भगवान का दर्शन करना। इसीलिए यह आता है नाहम विप्रो न च नरपति नाप वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपतिर् नो वनस्थो यतर्वा किंतु प्रोज्वल निखिल परमानंद उपामृताब्धे गोपी भरत पद कमलयोर दास दासानुदास। बड़े बड़े सन्यासी उपदेश देते हैं सोहम ब्रह्मा सोहम। यहाँ के वैष्णवजन यहाँ के भक्त कहते हैं भाई एक अक्षर इसने कम कर दिया, सोहम नहीं है दासोहम। वैष्णव में जो ब्रज के भक्त हैं वो दास में भी कहते हैं नहीं दासानुदासोहम। मैं तो भक्तों की चरण कमलों की पादुका का दास हूँ। मैंने आंखों से कलकत्ते में प्रत्यक्ष देखा है एक भक्त महात्मा आए आगे बैठे हुए। लोगों ने कहा महाराज आप आगे बैठे हैं, यहाँ तो जो प्रधान है बैठेंगे जो पीछे खिसक गए। क्या होता है उनको पकड़ करके सबसे पीछे पठाल दिया। यहाँ बड़े बड़े लोग बैठेंगे, बड़े विद्वान बैठेंगे, बड़े महात्मा बैठेंगे। वो तो महात्मा जी चरण पादुकाओं के पास जाकर के बैठ गए। और जो लोगों ने देखा अरे ये तो बड़े महात्मा हैं इनको जूतियों के पास बैठा दिया है जो उनको उठाते हैं। नहीं नहीं बोले आज तो मेरे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि मैं भक्तों की पादुकाओं के पास बैठा बैठा ये जो भक्त आए हैं पीछे से जूती देखते रहेंगे कहीं चोर नहीं ले जाए, आज तो उनकी पादुकाओं की सेवा करूँगा, बस यही मेरी भक्ति है। तो वास्तव में कितनी सरलता है, वो सरलता ही भक्ति का लक्षण। वाग गद गया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीषम हसति क्वचि च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मय भक्ति युक्तो भवनम पुनाति। मेरा भक्त जो है संसार का कल्याण करता है। जिसमें स्वामी चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे हैं, महाराज मार्ग में जितने भी हिंसक जंतु हैं सब उनके कीर्तन को देख करके अहिंसक हो जाते हैं। यही विशेष कर्म भक्ति में है। इसलिए मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि बस मेरी वाणी गुणानु कथन है। आज मेरा बड़ा भाग्य है सब संतों के दर्शन, सब महात्माओं के विद्वानों के दर्शन, इतना कह करके। और बस
सूक्ष्म तत्व समन्वितम् भाषणम प्रस्तुतम श्रीमद् मुरारीलाल शास्त्रण। अभी मुरारीलाल जी ने प्रणादव सुनिश्चित के साथ सूची का व्याख्या की। अब मैं आगे यहाँ के धुरंधर विद्वान रंगलक्ष्मी के प्राचार्य अनेक विषयों के आचार्य श्री मुरारीलाल जी शास्त्री से निवेदन करता हूँ। और विद्वानों को याद दिलाना चाहिए कभी कभी, यहाँ महाराज जी ने सर्व वेदांग सारम यत सर्व वेदांग सारम यद ब्रह्मात्मयी कत्व लक्षणम वस्वत द्वितीय तन्निष्ठम कैवल्य प्रयोजनम जैसे ये रखा हुआ है। अच्छा हो जैसे शंकर वेदांत की लोग केवल एक छाती अपनी मानकर और श्रीमद् भागवत को ये समझते हैं जिसमें सिवाय ज्ञान की और कुछ भी नहीं है, वस्तु है, अद्वितीय है, तन्निष्ठ है, कैवल्य एक प्रयोजन। संभवतः महाराज जी के मन में रहा है कि हम इसको किस प्रकार से भक्ति पर लाएं, कैवल्य शब्द को हम कैसे लाएं भक्ति में। अब आप आगे के विचार सुनिए।
मेघाच्छविं वेणुधरं प्रशान्तं गोपांगना प्रांगण केलकीरं श्रीमद् यशोदाक्ष चकोर चंद्रम गोविंद देवं प्रणमामि नित्यम्।
प्रातस्मरणीय गुरुचरणाः एवं परम श्रद्धेयाः सर्वे विद्वांसः अत्र गताः सर्वे अतिथयः स्त्रयः बांधवाश्च यद्यपि अभिरूपी भूयिष्ठेयं परिषद् अस्यां परिषदि समुपस्थिता ये विद्वांसः समागताः ते सर्वे संस्कृतं वक्तुं पारयन्ति इत्यहं मन्ये। तथापि अत्रोपस्थितानां जनानां स्वरूपं दर्शं हिंदी भाषायामेव अवलम्ब्य सर्वे प्रोच्यते अस्माद्य तो अहम अपने हिंदी अनुसृत्य वच्मि। पुमान भवाद्धिम न तरेस्त आत्महा, ऐसा कहा गया कि यदि मानव जीवन मिला और इस वो भवसागर से पार न हुआ तो वो आत्मघाती है। ईश्वर तत्व पर और अपर रूप से द्विविध वर्णित है। वास्तविक में बात यह है कि व्यक्ति चाहे वो वर्णन करता रहे लेकिन मुख्य उपदेश क्या दिया है कि सर्वोपनिषदाम सारम पे बोलना है। तो मेरा कहना यह है कि ये मानव देह अनेक योनियों में भ्रमण करके और अंतिम मिला है। ये ही विवेकशील है, इसने विचार किया कि भाई क्या कारण है मुझे शाश्वत आनंद नहीं मिलता। जब मैं बाल्यावस्था में था तो मुझे जननी से प्रेम था, जब मैं किशोर बना तो मुझे सखाओं से प्रीति हुई, और जब मैं युवा हुआ तो मुझे युवती ने अपने स्नेह पास में बांध लिया। और अनेक जन्म जन्मांतरों में भ्रमण करता हुआ मैं देव भी बना, मैं पशु भी बना, पक्षी भी बना। तब विचारशील व्यक्तियों ने विचार किया कि मूल कारण क्या है जिससे हमको शाश्वत आनंद नहीं मिलता। तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए ही श्री जीव गोस्वामी महाराज ने श्रीमद् भागवत के विषय संबंध अधिकारी और प्रयोजन जो अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं उन पर विचार किया, और उसमें तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, भगवत संदर्भ एवं श्री कृष्ण संदर्भ, इन चार संदर्भों के द्वारा उन्होंने केवल संबंध का वर्णन किया है। इस जीव का ब्रह्म से किस प्रकार संबंध बने, बस इनका इसका चार संदर्भों में वर्णन है। और पंचम संदर्भ है भक्ति संदर्भ, उस भक्ति संदर्भ में साधन का विवेचन है। कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, उस साधन पर विचार किया गया। एवं अंतिम संदर्भ है उनका प्रीति संदर्भ, उस प्रीति संदर्भ में ही इस पद्य पर गहन विचार है आपकी संप्रदाय के अनुसार। उस प्रीति संदर्भ में श्रीमद् भागवत क्या है और उसके प्रयोजन क्या है, इसके प्रतिपादन करने में जीव गोस्वामी महाराज ने इस पद्य को प्रमाणत्वेन उपन्यस्त किया है कि सर्वोपनिषदाम सारम ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। यहां कैवल्य शब्द यद्यपि मुक्ति ही कैवल्य निर्वाण श्रेयो निश्रेयसामृतम मोक्षोपवर्ग शक्तग्रहम व्याकरण उपमान कोशात्वाक्यात व्यवहारतस्य के अनुसार कोश प्रमाण से कैवल्य शब्द का अर्थ मुक्ति ही है। ये आठ पर्यायवाची परस्पर में शब्द हैं, कैवल्य है, निर्वाण है, ये सब मोक्ष परक हैं। अब ये है कोश केवल वाच्यार्थ का निरूपण करता है। जो शास्त्रज्ञ हैं, साहित्यज्ञ हैं, काव्य वासना परपक्व बुद्धि जो सहृदय पुरुष हैं जीव गोस्वामी जैसे महाराज, जो जानते हैं कि अर्थ त्रिविध होता है वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य, उस वाच्यार्थ की कोई प्रधानता नहीं होती व्यंग्यार्थ के समक्ष। जिस समय व्यंग्यार्थ यदि चमत्काराधायक कोई प्रतीत हो रहा है तो वाच्यार्थ का वहां परित्याग होकर के वो ध्वन्यमान अर्थ कहलाता है। तो इसी कैवल्य का
यद्यपि कोष से मोक्षार्थ है तथापि जीव गोस्वामी महाराज ने इसका भक्ति अर्थ किया है। कहो किस प्रकार किया है? परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यद्यपि नैयायिक दृष्टि से ज्ञान क्षण द्वयावस्था ही है, नील पीतादिकों का ज्ञान क्षणिक है, लेकिन यह ईश्वरीय ज्ञान कैसे शाश्वत रहता है, इसमें क्या प्रमाण है? ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रमाण है। ये सत्य भूत है, अनंत है, कभी इसका विनाश नहीं होता, सदा सोमवेदम अग्र आशीत, इन श्रुतियों से जगत की एक कारणता भासती है, एको हम भविष्याम से उसकी संकल्प चेष्टा भासती है, ईश्वर जो संकल्प चाहे उस काम को कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि अद्वैय ज्ञान जो है वो अद्वैय ज्ञान रूप वो ही परमानंद संदोह है। परमानंद संदोह की प्राप्ति करना ही जीव का मुख्य लक्ष्य है, उसे परमानंद कैसे मिले बस वही ये चाहता है। तो ये अद्वैय ज्ञान जो है इसी को दो प्रकार से विभक्त किया, जैसे मुक्ति के पांच भेद होते हैं, मुक्ति पंचविध है, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी इत्यादि भेद से वो पांच प्रकार की है, लेकिन उसमें सायुज्य मुक्ति भक्तों की दृष्टि में अत्यंत निकृष्ट है, केवल सामीप्य भक्ति को उत्तम मानते हैं। भक्त जो है उनमें सामीप्य भक्ति जैसे उत्तम है, उसी प्रकार से परतत्व का जो साक्षात्कार है उसी का नाम मुक्ति है, उसी से भक्ति सिद्ध होगा। मुक्ति का लक्षण श्रीमद् भागवत जी में किया, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप व्यवस्थिति को बतलाया गया, अन्यथा रूपम हित्वा, अन्यथा रूपम किम देहाद्यंकृति, ये अनाद वासना से चला आ रहा जो जीव है इसमें वासना भरी हुई है कि मैं स्त्री था, मैं पुरुष था, मैं पशु था, मैं पक्षी था, वो सब जो वासना वासित जीव है उसको साक्षात्कार नहीं हो रहा ब्रह्म का, क्योंकि वो माया उसको ढके हुए है, और जब वो माया दूर हो जाएगी तो माया कब दूर होगी? जब भगवत प्राप्ति होगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया और मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते, वो ही पार होता है जी। इसलिए कैवल्य शब्द का मुझे भक्ति अर्थ करना है प्रीति, वो कैसे होगा कि शुद्ध केवल, केवल का अर्थ है शुद्ध, इसी से शुद्धाद्वैत है, वैष्णवों का मूल सिद्धांत है, केवलों का अर्थ है शुद्धा, गुण वचन ब्राह्मणा दिभ्य स्याय, पाणिनि का सूत्र है गुण वचन ब्राह्मणा दिभ्य स्याय, केवलस्य भाव कैवल्यम, भाव अर्थ में गुणवचन ब्राह्मणा दिव्य स्याय सूत्र से जब स्याय प्रत्यय किया जाता है तब कैवल्य शब्द की निष्पत्ति होती है। और यहां श्री जीव गोस्वामी महाराज ने लिखा यदि भाव में प्रत्यय हो गया तो काम बिगड़ जाएगा अपना, तो वो कहते हैं क्वचित तद्धितांत प्रत्यय ना भी कैवल्य शब्द प्रयोग, तद्धितांत प्रत्यय स्वार्थ का, स्वार्थ के न तद्धितांत प्रत्यय, अत्र शय प्रत्यय स्वार्थ को गे, हाँ केवल एव कैवल्य, केवल शुद्धो हरि सैव कैवल्य, तदेव एकम प्रयोजनम यस्य तत् एतत् पद्यम एतदपि स्मरणीय विद्वद्भि एतत् विशेषणम, अस्मिन् पद्ये विशेष्यवाचकम पदम नास्ति, सर्वोपरिषदाम सारम ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयं तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम सर्वाणि विशेषणानि, अत्र विशेषवाचकं पदमेव नास्ति, विशेषवाचकं पदं तु पूर्वस्मिन् पद्ये विद्यते श्री भागवतम यत्र उक्तः एवं पुराण संदोहः चतुर्लक्षो उदारतः तत्र अष्टादश सहस्रं श्री भागवतमित्यते, तो श्री भागवतम इत्यनेन एव विशेषणानि अन्वयं प्राप्नुवन्ति, श्री हरिसेव्यः एतदेव अस्ति, अतः कैवल्य पदेन एका हरि तदेव एकं मुख्यं प्रयोजनं यस्य, भगवत प्राप्ति कथं भवेत् एतदेव मुख्यं प्रयोजन मनुष्य एतदेव। रंग संस्था प्रधान रंग विद्यालय प्रधान सम्यक नाम रंग संस्था प्रधान मुरारी लाल शास्त्रिणा, रंग संस्था प्रधान
मुरारी लाल शास्त्रणा आदौ तु संस्कृते प्रोक्तम् आदौ तु संस्कृते प्रोक्तम् ततः संदर्भ सारकम् पुनः संदर्भ सारकम् अर्थात संदर्भ सार संबंधे निगदतम् और कैवल्य शब्द से अतीवा सरला सुमधुरा व्याख्या अत्र कृता। धन्यवाद भवन्तः। आगे मैं धीर लाल शास्त्री जो सिद्धार्थ के बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं उनसे निवेदन करता हूँ
पदार्थारो यदपादाम्बुजरे वह श्रियानाम तान निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश्याम् शर्भिर्विराजते योषौ पञ्चधां हृदये मम।
सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण विराज रहे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके फिर तदनंतर अध्यक्ष महोदय, तदनंतर विद्वद्गण, वैष्णव समुदाय, माता और बहने, आज का दिन परम हर्ष परम उल्लास का है। क्यों? ये जो सभा प्रारंभ हो रही है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को लक्ष्य लेकर के चल रही है। और कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ होती है? कृष्ण को मानने वाले असंख्य जीव आज भी इस भारत में हैं और विदेश में भी होंगे, लेकिन वो श्री कृष्ण जो है, जिसको श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कृष्ण शब्देन परम वस्तु उच्यते तदेव कदाचित परम सौंदर्यम स्वगतम प्रगति करिष्यामि इति साकारम प्रादुर्भूतं सत् श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण ने इस मथुरा में जन्म लिया। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा वो श्री कृष्ण ने अन्यत्र कहीं जन्म लेने की इच्छा नहीं की? क्या विशेषता थी जिस कारण से वो श्री कृष्ण जो परब्रह्म परमात्मा है उसने मथुरा में ही जन्म लिया? तो जहां श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में है इसका प्रकरण आया मथुरा का, वहां ऐसा लिखा राजधानी ततस्सा भूत सर्वयादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। वल्लभाचार्य जी महाराज ने जो टीका है उनकी सुबोधनी है उसका नाम, और उसमें बीच बीच में उनने कारिकाएं दिया है। श्लोक नहीं कहा उनको कारिका शब्द से कहा है। इस श्लोक के ऊपर आपने कारिकाएं दी हैं, उस कारिका में सबसे प्रथम कारिका जो यहां संबंध कर रही है वो कारिका आप वल्लभाचार्य जी महाराज आज्ञा करते हैं। सर्व तत्व इस यो इष्ट सभूमा वपिसंगत सनित्यं क्वचिदेवास्ति तत्स्थानम मथुरा स्मृता। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण तत्वों के अंदर विराजमान है, व्याख्याकारों ने भी उसी अभिप्राय को लिखाया, अथेदम विचार्यते। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो तदेवानुप्राविशत, उस सृष्टि को प्रकट करके भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। और आगे जाकर के भागवत ने वर्णन किया, त्रयोविंशति तत्वानाम गणम युगपदाविशत। इस प्रकार से श्रुति और पुराणों के वाक्य के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि जो भगवान संपूर्ण तत्वों में विराज रहे हैं, वही भगवान इस पृथ्वी में भी विराज रहे हैं। सब भूमा वसंगतः, वह भूमि जो पृथ्वी है उसमें भी विराज रहा है। तो जैसे वेदों ने वर्णन किया, वेद को ही श्रुति शब्द से कहते हैं, तो जैसे वेदों ने कहा कि गुहाम प्रविष्टौ, ये हृदय रूप जो गुफा है, आओ उसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही विराज रहे हैं। तो जैसे देह में प्रविष्ट वह परमात्मा और देह का एक देश जो ये अंतकरण इसको कहा जाता है, तो देहिक देश, देह का जो एक देश अंतकरण है, उस अंतकरण में वो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। तो जिस प्रकार देह के एक देश अंतकरण में वो अभिव्यक्त प्रकट होता है, उसी प्रकार से संपूर्ण भूमि में विराजता हुआ, संपूर्ण तत्वों में विराजता हुआ भी वो श्री कृष्ण, भूमि का जो एक देश मथुरा है, उस मथुरा में उसने प्राकट्य स्वीकार किया। ऐसा वर्णन करके फिर भगवान के जन्म का प्रसंग आया। भगवान ने जन्म लिया, तो जन्म लिया तो देवकी माता और वसुदेव जी दोनों ही दर्शन कर रहे थे, वो ही अधिकारी थे। तो दर्शन करने पर उनके लिए ये प्रारंभ हुआ भागवत से, समद्भुतम बालक मम मुझे क्षणम। वो कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए। जब अद्भुत बालक के रूप में वो प्रकट हुए तो वहां भी वल्लभाचार्य जी ने एक कारिका लिखी बड़ी सुंदर, दासीनाम सर्वरक्षार्थम निमित्ती कृत्यतादृशम प्रादुर्भूतो मम स्वामी नैश्चिंत्यम वाच पूर्ववत। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, ये जो है श्री कृष्ण जो प्रकट हुआ, वो दासियों जो श्री गोपीजन हैं उनकी रक्षा करने के लिए, अत सर्व गुणों पे तह से जो अलौकिक काल बतलाया, उस काल को निमित्त बना करके और मेरा जो स्वामी है वो प्रकट हुआ। इस कारिका से ये निश्चय होता है, कि वल्लभाचार्य जी महाराज के जो इष्ट थे वो गोपीजन वल्लभ। तो मथुरा में जो श्री कृष्ण प्रकट हुआ है, उसके लिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा मानते हैं कि ये मेरा सर्वस्व प्रभु जो श्री गोपीजन वल्लभ है, वही इस रूप में प्रकट हुआ है। इस बात को मम स्वामी और दासी नाम, इन दोनों शब्दों के द्वारा वो उसकी तरफ, उस अर्थ की तरफ उसका आकृष्ट होता है, खिंचाव होता है। इससे निश्चय होता है कि जो गोपीजन वल्लभ है वो श्री कृष्ण, वो मथुरा में प्रकट हुआ है। मथुरा में वो श्री कृष्ण, वो तत्र आयास्यामि एवं संक्षेप। तो वहां श्री कृष्ण जो मथुरा में प्रकट हुए, वो मथुरा में प्रकट हुए श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार से खेल करते हैं। वहां चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं, वो उनके ही संप्रदाय जो माध्व संप्रदाय है, ये इस माध्व संप्रदाय का प्रधान विषय क्या है, संकीर्तन। संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। उस संकीर्तन को कैसे किया जाए, ऐसे नहीं मन कहीं है, ध्यान कहीं है, इंद्रियां कहीं जा रही हैं और श्री कृष्ण हरे राम, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बताया कि अगर तुम ऐसे ही सामान्य रीत से कीर्तन करोगे तो उसका सामान्य फल तुमको मिल जाएगा। भगवत प्राप्ति जो उसका मुख्य फल है वो नहीं मिलेगा। वो जब मिलेगा, जब उसके लिए तीन प्रकार बताए, वो तीन प्रकार से तुम जाओगे तब वो संकीर्तन तुम्हारा सफल बनेगा। तो क्या आज्ञा की आपने, तृणाम दप सुनी चेनाम,
तरुरिव सहिष्णुनाम अमानिनाम मानदीनो कीर्तनीय सदां हरि।
हरि का सदा कीर्तन करो, लेकिन इस प्रकार से करो तब वो सफलता लाएगा। पहले तृणात अब सुनीचे, इन तृणाम तिनका, तिनका कितना नीचा होता है, उस पर पैर भी रखता है चाहे जसरे से उसको मसल देता है, आए उससे भी मैं नीचा हूं ऐसी भावना करूं। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा भाव जो पदार्थ है उस पर अगर पहुंचना है तो पहले भावना करनी पड़ेगी। भावो भावनया सिद्धा साधनम नान्य दिश्यति। भाव पदार्थ पे पूछने के लिए भावना करूं। भावना का प्रकार भी भागवत में बताया, सुस्मितम भावयेन मुखम। एकांत में बैठो, पवित्र आसन पर ऐसा ध्यान धरो तो भगवान श्री कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कान करते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। ऐसी भावना करोगे तब जाकर के वो भगवान की भाव प्राप्त होगा। इसलिए आपने आज्ञा की, तृणादब सुनी से तिनका से भी नीचे बन जाओ। ये भाव कब आ सकता है? जब अभिमान का निराश हो। जीव में महाराज अभिमान इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि वो महाराज तृणादब सुनी को स्वीकार ही नहीं करता। और तरोरिव सही सुना, वृक्ष जैसे सहन करता है ऐसा सहन करो। और अपने हृदय में ऐसा भाव रखो कि मुझे मान की आवश्यकता नहीं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मान को दो दूसरों को। इस प्रकार से अगर संकीर्तन किया तो वो सफलता को निश्चित प्राप्त कराएगा, भगवत प्राप्ति निश्चित करेगा। अस्तु, बार बार हमारे संचालक महोदय कह रहे हैं तो मैं भी हाँ, तो इसलिए